Yeah. बाद परमहंस सुपरविज प्रचार अष्टोदर्शक नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की श्री श्री गौनिताई जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की सामवेद गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। संख्या 45 पर कुछ भगवत चर्चा करने का आदेश प्राप्त हुआ है। मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूं, आप कृपा करके इसको मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितरा उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजायां मायां ततांजन मोहिनी। पितराव उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजाम् मायां ततांजन मोहिनी। पितरावुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजाम् मायां ततांजन मोहिनी। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पितरौ उनके माता पिता ने उपलब्ध अनुभव करने के पश्चात अर्थौ भाव ईश्वर के रूप में उनका वैभवशाली पद विदित्वा जानकर पुरुषोत्तम परम पुरुष ने मां भूत इति ऐसा नहीं होना चाहिए निजाम अपनी मायाम माया को ततान विस्तार दिया जन अपने भक्तगण को मोहिनी मोहने वाली। इसका अनुवाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कही एक एक बात हो एक बार बोलिए सभी साथ, यह जानकर कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह सोचा कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए, अतः उन्होंने अपने भक्तों को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया। इसका तात्पर्य, यदि वसुदेव तथा देवकी भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में देखते तो पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रबल प्रेम नष्ट हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे, वे तो उनके साथ वात्सल्य रस का आनंद लेना चाह रहे थे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद प्राय इंगित करते थे, यद्यपि हम सामान्यतः ईश्वर को परम पिता के रूप में सोचते हैं, किंतु कृष्ण भावना में हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं और उनके माता पिता की भूमिका निभा करके उनके प्रति अपने प्रेम को प्रगाढ़ बना सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर संकेत करते हैं कि जन शब्द का अर्थ भक्तों के रूप में किया जा सकता है, जैसा श्रीमद् भागवतम के श्लोक संख्या 3:29-13 में दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना में उल्लिखित है। उनके अनुसार जन का अर्थ माता पिता के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि जन शब्द जन धातु से बना है जिसका अर्थ कारक रूप में जनयते है, जन्म देना। इस अर्थ में जैसा कि जननी या जनकौ में है, जन मोहिनी पद से सूचित होता है कि श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति का विस्तार करना चाह रहे थे, जिससे वसुदेव तथा देवकी पुनः उन्हें अपने प्रिय पुत्र की भांति प्यार कर सकें। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। वांछाकल्पतरु अखिल हे ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अखिल रसामृत सिंधु सार मूर्ति रसिक शेखर वृंदावन बिहारी लीला बिहारी रास बिहारी श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की मधुरतम लीलाओं का वर्णन जिस ग्रंथ के माध्यम से हम आप सब नित्य ही श्रवण करते हैं, उस निर्गुण पारायण स्वरूप इस सत्संग में आप सभी का स्वागत है। निर्गुण पारायण इसलिए कहा क्योंकि स्कंद पुराण में जहां पर श्रीमद् भागवतम के पारायणों की चर्चा की गई है कि कितने प्रकार के पारायण हैं, वहां पर चार प्रकार के पारायणों का वर्णन किया गया है। सात्विक पारायण, राजसिक पारायण, तामसिक पारायण और निर्गुण पारायण। सात्विक का अर्थ हुआ जो व्यवस्थित रूप से अध्याय दर अध्याय चलते हुए और समीचीन तरीके से हर एक चरित्र को दृष्टांत के माध्यम से कुशलता पूर्वक कम से कम भी तो एक महीने में जो पूरा किया जाए उसको सात्विक पारायण कहा जाता है। राजसिक पारायण कहा जाता है जो एक सप्ताह के अंदर किया जाए, और तामसिक पारायण वैसा पारायण है जिसमें अवधि तो निश्चित है परंतु व्याख्यान करने की जो पद्धति है वो अस्त व्यस्त है। कभी कुछ व्याख्यान कर दिया, कभी कुछ व्याख्यान कर दिया, आगे पीछे करके व्याख्यान करा, इसको तामसिक पारायण कहा जाता है। और आप सब बहुत आश्चर्यचकित होंगे सुनकर कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें पद्धति दी है वो न तो सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है, वो निर्गुण पारायण है। निर्गुण पारायण का अर्थ होता है जिसकी कोई अवधि नहीं होती है और हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम यत्नतश्च दृढ़ालता। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है कि जब से इस संस्था को प्रभुपाद जी ने स्थापित किया तभी से ही श्रीमद् भागवत का निर्गुण पारायण हम सुनते चले आ रहे हैं। और निर्गुण पारायण का वास्तविकता में अर्थ ये है कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठा के आपको विशुद्ध सत्व के अंदर स्थापित कर दे और भगवान का जो सर्वोत्तम श्री कृष्ण प्रेम, उनके चरणारविंदों का जो प्रेम है वो आपके हृदय के अंदर उसको स्फुरित कर दे, इसको निर्गुण पारायण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है, प्रमाणम अमलम, श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं ये अमल पुराण है और ऐसा प्रमाण है कि इसमें जो आप अपने भक्ति के लिए, अपने साधन के लिए जो आप खोजना चाहें वो सब सामग्री आपको इसके अंदर प्राप्त हो जाएगी, परंतु आपको इसको आनुगत्य में रहकर और श्रद्धा पूर्वक इसका अगर आप सेवन करेंगे तो आपको सब कुछ इसी में ही प्राप्त हो सकता है। पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो तथान्यो नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दोर युगलम तथान्यो कंठस्तु राजन नवमो यदियो मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम और एकादशो यस्य ललाल ललाट पट्टम शिरो पितु द्वादश एव भाति। ये श्रीमद् भागवतम का वर्णन जो है अंग स्वरूप में किया गया है। कह रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय जो स्कंद हैं वो भगवान के दो चरण हैं, तृतीय जो स्कंद है वो भगवान का उदर है, चतुर्थ कटी कहा गया, पंचम नाभि कहा गया, षष्ठ वक्षस्थल कहा गया और सप्तम और अष्टम जो है भुजांतरम, दो भुजाएं कही गई,
नवम जो है नवम तुयस्य कंठम, ये भगवान का कंठ है, और दशम मुखारविंदम यस्य प्रफुल्लम, जो स्मित मुखारविंद है श्री कृष्ण का उसको दशम स्कंद से संज्ञा दी गई है। एकादश को कहा गया ललाटपट, और द्वादश जो है द्वादशो शिरो पितु द्वादश एव भाति, जो शीश जो है इसको द्वादश स्कंद कहा गया है। अब चर्चा दशम स्कंद की प्रारंभ हुई है कुछ दिनों से, क्योंकि कली जन्माष्टमी है और इसकी पूर्व बेला में गत कई दिनों से अन्य अन्य अध्यायों के माध्यम से कृष्ण लीला की चर्चा हो रही है। तो ब्रजवासी कहवे ऐसो कि अन्य स्कंद तो बड़ी अच्छी बात है, सब में कृष्ण कथा कही गई, परंतु ये जो दशम है ना, बोले दशम ना है, ये सबको खसम है। समझे बात को, समझ गए बिल्कुल देहाती ठेठ भाषा में। तो और वास्तविकता भी यही है, हमारे सभी आचार्यों ने श्रीधर स्वामी पाद, श्रील विश्वनाथ चतुर्थीपाद और जीव गोस्वामी पाद मुख्यतः सबने प्रायः दशम स्कंद के ऊपर टीका लिखी, और बहुत विस्तृत रूप में। जीव गोस्वामी ने तो इतना कमाल कर दिया कि वैष्णव तोषणी, फिर उसके बाद क्रम संदर्भ में और षट संदर्भों में इतना वर्णन किया है दशम स्कंद के बारे में, और फिर सर्व संवादिनी में, मतलब लेखनी जितना जीव गोस्वामी ने दशम स्कंद के ऊपर लिखा शायद ही किसी ने लिखा होगा। फिर अन्य अन्य भी वल्लभाचार्य ने लिखा और अन्य आचार्यों ने, कम से कम भी तो 32 से 35 टीकाएं जो है वो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के ऊपर जो है वो प्राप्त हैं, इतना दशम स्कंद के ऊपर लेखनी उठाई गई है। तो अब ये दशम स्कंद में वैसे अध्याय तो देखिए इसका शीर्षक है कि श्री कृष्ण के द्वारा गुरु जी के पुत्र की पुनरागमन, उनकी प्राप्ति कराना, परंतु वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। मैं कुछ बहुत विशेष जो बिंदु हैं उन पर कुछ केंद्रित करना चाहूंगा, ताकि कल का जो पर्व है उसको आप और उत्साह के साथ और तत्व को समझने के बाद अगर आप ठीक से मना पाएंगे ठीक से। कृष्ण जन्म इतना रहस्यमयी है कि इसको समझने के लिए जब तक आप आचार्यों का अनुगत्य ना लो, ये सामान्य व्यक्ति के समझ में आने वाली बात नहीं, बहुत रहस्यमयी बात है। तो मैं शुरुआत से थोड़ा थोड़ा करते करते यहां तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, ताकि इसमें लगभग सारे बिंदु जो है वो कवर हो जाए और ये बात स्थापित हो जाए कि वास्तविकता में जो जीवन का परम लक्ष्य जो है वो केवल और केवल कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य शुद्धा और रस रूपा भक्ति जो है उसको ही स्थापित करना है। श्री कृष्ण जन्म का जो अध्याय शुरुआत हुई है, इसमें एक बहुत विशेष बात है समझने वाली। आप पूरे दशम स्कंद को देखिए तो भगवान की जो लीलाएं हैं पूरी मिला के 125 वर्ष की पूरा लीला काल जो है श्री कृष्ण ने इस लौकिक समय में व्यतीत किया, जिसमें से 11 वर्ष 6 मास और 5 दिन श्री कृष्ण ने ब्रज में बिताए, और उसके बाद मथुरा लीला जो है वो 15 वर्ष की है, और बाद में जो द्वारिका लीला है वो 98 वर्ष की है। तो 11 वर्ष 6 मास और 5 दिन में ब्रज लीला का जो काल है वो शुरू हुआ है भाद्र कृष्ण अष्टमी से, कल की तिथि से, और कृष्ण यहां पर रहे हैं ब्रज में भाद्र कृष्ण अष्टमी से लेकर फागुन कृष्ण त्रयोदशी के बाद, क्योंकि अक्रूर जी कृष्ण को, कृष्ण बलराम को लेने आए तो त्रयोदशी को आए, एकादशी को आए थे, एक दिन रुके और फिर उसके बाद त्रयोदशी को लेकर चले कृष्ण, और चतुर्दशी को जो कंस ने धनुर्भंग का जो रंगमंच जो है वो स्थापित किया था मथुरा में श्री कृष्ण का वध कराने के लिए चारों और मुष्टिक के द्वारा, वो चतुर्दशी वाले दिन कंस का श्री कृष्ण ने वध किया है, जिसको शिव चतुर्दशी कहा जाता है। चतुर्दशी वाले दिन कंस का वध हुआ और उसके बाद में भगवान फिर नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों को वापस भेज देते हैं और स्वयं मथुरा के अंदर विराजमान हो जाते हैं। ये तो ब्रजलीला का पूरा परिक्षेप हो गया, जिसमें 11 वर्ष 6 मास और 5 दिन की ब्रजलीला है। अब 15 वर्ष की जो मथुरा लीला है उसमें ज्येष्ठ मास में, यानी कि जब कृष्ण आए फागुन में, उसके 3 महीने के बाद जेठ में श्री कृष्ण बलराम का उपनयन संस्कार हुआ। 3 महीने के बाद उस समय श्री कृष्ण की आयु थी 12 वर्ष 6 महीना, क्योंकि 11 वर्ष और 6 मास 5 दिन के ब्रज से यहां पर आए थे। और उसके बाद में वसुदेव जी ने उपनयन कराने के बाद सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में कृष्ण बलराम को भेजा, तो वहां 1 वर्ष रहे और फिर उसके बाद में अक्रूर जी का हस्तिनापुर गमन हुआ है, इत्यादि इत्यादि करके क्रम संदर्भ में इन सब चीजों का वर्णन किया गया। जरासंध का आक्रमण जो है 10-10 मास के अंतराल के ऊपर हुआ है, 18 बार आक्रमण। तो ये सब मिला के श्री कृष्ण का जो की जो आयु है वो मथुरा लीला में पूरी मिला के 15 वर्ष का मथुरा लीला का काल है और कृष्ण की पूरी आयु मिलाकर 26 वर्ष की है पूरी मथुरा लीला में। अब इसके बाद में 98 वर्ष की द्वारका लीला है। 26वें वर्ष में जरासंध इत्यादि को मारने के बाद भगवान द्वारका में स्थापित हुए और वहां से द्वारका लीला का वर्णन शुरू हुआ है। 26 और 2 28, बलदेव जी का विवाह हुआ जब 28 वर्ष के श्री कृष्ण थे। उसके बाद में रुक्मणी जी से विवाह हुआ श्री कृष्ण का 1 वर्ष बाद में, जब कृष्ण की आयु 29 वर्ष थी। ये सब का सब आचार्यों ने वर्णन किया, मैं अपने मुख से एक शब्द नहीं कह रहा हूं, सब संदर्भों में जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ 1 वर्ष बाद में जब कृष्ण की आयु 30 वर्ष थी और 16108 विवाह जो है उसी समय के दौरान 15 वर्ष में हुए और ठाकुर जी की आयु हो गई 45 वर्ष। प्रद्युम्न का द्वारका में प्रत्यागमन हुआ है तब 48 वर्ष की आयु है। बलदेव जी की ब्रज यात्रा हुई है तब ठाकुर जी की आयु 50 वर्ष है। अनिरुद्ध जी का जन्म 2 वर्ष बाद हुआ तब ठाकुर जी की आयु 52 वर्ष हो गई और कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासियों के साथ श्री कृष्ण का मिलन हुआ तब ठाकुर जी की आयु 62 वर्ष थी। राजसूय यज्ञ जब आरंभ हुआ तब भगवान की आयु 67 वर्ष थी और श्री कृष्ण का ब्रज में जब प्रत्यावर्तन हुआ दंतवक्र को मारने के बाद उस समय ठाकुर जी की आयु 72 वर्ष थी। द्यूत सभा का जब आयोजन हुआ तो कृष्ण 73 वर्ष के थे। पांडवों का वनवास हुआ तब ठाकुर जी की आयु 86 वर्ष थी। 13 वर्ष और मिला लीजिए 73 में, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और उसके बाद युद्धोद्यम उद्यम हुआ है जब 2 वर्ष के लिए भगवान ने अर्जुन के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है कि कहां पर युद्ध किया जाएगा और कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है उसको स्थापित किया। 2 वर्ष लग गए इसमें। तब ठाकुर जी की आयु 88 वर्ष हो गई और महाभारत का जो युद्ध है वो मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को शुरू हुआ, मोहिनी एकादशी, एकादशी जिसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी बिल्कुल, और माघ कृष्ण त्रयोदशी तक चला है 18 दिन युद्ध। तो उस समय ठाकुर जी की आयु 89 वर्ष, 89 वर्ष। और इसके बाद में 36 वर्ष जो है द्वारका में भगवान रहे और बाद में अंतर्धान हुए, तो 89 और 36 मिला के 125 वर्ष की कुल आयु है भगवान। ये पूरा लीला क्रम किस किस समय पर क्या क्या हुआ है ये सब वैष्णव तोषणी में जीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट रूप से पूरा वर्णन किया और इसके प्रमाण भी सारे दिए हुए हैं। इतना सब कुछ ठाकुर जी ने किया यहां पर आके, अब ये सब बहुत अभूतपूर्व है। अब शुरुआत से देखिए जन्म हुआ कैसे है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इतना रहस्यमयी ये प्रसंग है कि जब पृथ्वी बहुत व्याकुल हो गई और सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची, तो वहां पर क्षीरोदक्षायी विष्णु से प्रार्थना की गई है। अब विचारणीय योग्य बात यह है कि प्रार्थना तो की गई क्षीरोदक्षायी विष्णु से, परंतु अवतार हो रहा है परम पुरुषोत्तम, अवतारों के भी जो अवतारी है श्री कृष्ण का। बहुत विशेष बात है इसके अंदर, पहले भी ऐसा किया गया है कई बार कि क्षीरोदक्षायी विष्णु से प्रार्थना की गई है तो भगवान विष्णु ही सामान्य रूप में प्रकट होते हैं असुरों का वध करने के लिए, परंतु यहां पर अवतारी प्रकट हो रहा है। प्रार्थना की जा रही है क्षीरोदक्षायी विष्णु से, परंतु प्रकट हो रहे हैं अवतारी श्री कृष्ण। तो इसकी संगति जो जीव गोस्वामी पाद मिलाते हैं वो ये कहते हैं कि जिस समय पर पृथ्वी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने गई, संयोगवश उसी समय पर अवतारी के अवतरण का समय भी निकट उसी समय पर प्रस्तुत हो गया था। यानी कि वैवस्वत मन्वंतर के 28वें चतुर्युग का जो द्वापर है जिसमें श्री कृष्ण का अवतार होता है, यानी कि कल्पावतार, केवल एक कल्प में सिर्फ एक बार होता है, ये संयोग उस समय पर सामने आया जब पृथ्वी सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने के लिए गई कि मेरे ऊपर बहुत समस्या है, आप कृपा करके इसका निरूपण कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, इसका निरूपण होगा, परंतु इस बार मैं नहीं करूंगा, इस बार अवतारी कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे नीचे। तो जिस प्रकार से जब एक चक्रवर्ती सम्राट का पदार्पण होता है तो सभी मांडलिक राजा जो हैं वो उस चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्री कृष्ण जो कि अवतारों के भी अवतार श्री कृष्ण अवतारी हैं, उन अवतारी श्री कृष्ण के अंदर सभी अवतार, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, वराह अवतार हो, पूर्व अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, परशुराम अवतार हो, सारे 24 के 24 अवतार जो हैं वो श्री कृष्ण के अंतर्गत समाहित हो गए और श्री कृष्ण अवतारी स्वरूप में इस ब्रजमंडल के अंदर प्रकट हुए। तो अब प्रकट हुए हैं किस प्रकार से, ये रहस्य है सबसे बड़ा। देवकी वसुदेव को कृष्ण कंस ने कारागार में डाल रखा है, उससे पहले 6 जो पुत्र हैं देवकी और वसुदेव के वो कंस ने मार दिए हैं। अब 7वें जो हैं वो बलराम जी के प्राकट्य का समय आया है। बलराम जी के प्राकट्य का भी बहुत बड़ा रहस्य है कि रोहिणी जी को वसुदेव जी के द्वारा नंद ब्रज के अंदर स्थापित कर दिया गया, नंदगांव में। वहां पर आचार्यगण टीका में इस प्रकार से लिखते हैं कि रोहिणी जी उस समय पर 2 महीने के गर्भ की थी जब वो नंद ब्रज में आई। तो सावन की जो पहली तीज होती है, ऐसा ब्रज में एक प्रकार से एक लोक रीति है कि श्रावण मास में बहू और सास जो है वो एक साथ घर में नहीं रहती, ये एक रीति है, अगर ऐसी रहेंगी तो कहीं ना कहीं लड़ाई आ जाएगी। तो ये लोक रीति है कि बहू जो है वो अपने पीहर चली जाती है और सास यहां पर रहती। तो रोहिणी जी को वसुदेव जी ने वहां अपने पास न रख के नंद ब्रज में भेज दिया। उस समय रोहिणी जी 2 महीने के गर्भ से थी। तो जैसे ही रोहिणी जी ब्रज में आई तो बूढ़ी बूढ़ी गोपी जो है वो देखते ही समझ गई कि रोहिणी जो है ये 2 महीने के गर्भ से है। तो सावन की पहली तीज को अब समय आया जब कंस को यह पता लग गया कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो श्राव हो गया है, कोई था एक गर्भ वो श्राव हो गया है। तो उसके बाद में भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि अब जो भक्ति सेवा का निरूपण करने वाले गुरु तत्व जो हैं बलराम जी, इनका स्थापन आप कृपा करके पहले तो देवकी के गर्भ में आए, फिर वहां से योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि बलराम जी को आप संकर्षण के रूप में उनको प्रस्थानांतरित कीजिए रोहिणी के गर्भ में। तो योग माया ने क्या किया, जो 2 महीने का गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में पहले से था उसको तो वहां से हटा दिया और बलराम जी को देवकी के गर्भ से स्थापित करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो ये जो कार्य हुआ है ये राखी पूर्णिमा वाले दिन हुआ है, जो अभी बलराम पूर्णिमा गई पीछे, इससे 1 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 2 महीने का गर्भ तो पहले और उसके बाद राखी पूर्णिमा पे बलराम जी का स्थानांतरण देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में हुआ। तो अब रोहिणी जी के गर्भ में राखी पूर्णिमा वाले दिन हुआ, तो उसके बाद में जब देवकी जी के गर्भ में बाद में फिर श्री कृष्ण का आविर्भाव होता, पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए, फिर वहां से उनके हृदय में आए और फिर हृदय से देवकी जी के हृदय में, वसुदेव जी के हृदय में आए, फिर देवजी के देवकी के हृदय में आ गए। तो यहां से श्री कृष्ण जन्म का प्रादुर्भाव शुरू होता है। तो राखी पूर्णिमा पे बलराम जी वहां आए, उसके पूरे 12 महीने बाद जाके बलराम जी का अगली श्रावण पूर्णिमा पे, बलराम पूर्णिमा पे बलराम जी का आविर्भाव हुआ है। तो सभी गोपियां जो बहुत ही वृद्धा थी वो ये विचार कर रही कि कुछ गणना करने में कुछ ऊपर नीचे है गई है, बालक जो है वो 14 महीनों को प्रकट हुए हैं। तो बलराम जी का जो प्राकट्य है वो सबने ये आकलन किया कि 14 महीने का बालक हुआ है, क्योंकि 2 महीने का तो पहले से ही रोहिणी जी गर्भ में लेकर आई थी, तो वहां पर उनको ये नहीं पता था कि ये बलराम जी हैं, किसी को पता नहीं है, वो कोई और बालक है, उसको योग माया ने हटा लिया और वहां पर जो है बलराम जी को स्थापित किया। तो 2 महीने वो और राखी पूर्णिमा पे बलराम जी आए और फिर पूरा 1 साल 12 महीने वो और 2 महीने 14 महीने के बलराम जी जो है वो उनका प्राकट्य हुआ है अगली श्रावण पूर्णिमा पे। ये जीव गोस्वामी पाद ने इसका निरूपण किया बहुत अच्छे से और इसके बाद में श्री कृष्ण का निरूपण इस प्रकार से किया कि भगवान जो है कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि ये 8वें महीने की संतान है, 9वें महीने की नहीं है, 7वें की भी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि जो 8वें महीने की संतान होती है ना वो सामान्य तौर पर बचती नहीं है, ये लोक के अंदर रीति है, इस प्रकार की एक मान्यता है। तो ये देखो अद्भुतता जो है वो प्राकट्य से पहले ही शुरू हो गई। तम अद्भुतम बालकमं बुजे क्षणम, इस प्रकार का बालक जो है आगे उत्पन्न होगा। तो भगवान गर्भ में आए और वसुदेव देवकी के जो पूरे श्री अंग में इस प्रकार से लक्षण और इतना दिव्य कांति जो है वो प्रकट होने लगी कि कंस जो है वो भयभीत हो गया पूरा। इतना भयभीत हो गया था कंस कि साधुओं से बात सुनी है, गुरुजनों से बात सुनी है कि जितने उसके सैनिक थे कहीं पर भी अगर काली चीज देखता था ना तो डर जाता था बहुत, क्योंकि पहले बता नारद जी आके कह गए उसको कि तेरा काल होगा वो काला काला होगा है, तो इतना डर गए वो कि काली चीज से इतना डर जाता कि जितने उसके सैनिक आसपास रहते थे ना सबके मूड मुड़ा दिए वाने, ये जो केश है काले काले सब मुड़ा दिए वो सबरे, क्योंकि काली चीज देखे लगे अब आए अभी आयो मेरे पास, अभी मारे हो मोहे। इवन यहां तक कहो जाता है कि भोजन करवे बैठतो तो दाल में जीरा देख के डर जातो, कारो जीरा, इतना डर। तो अब वो समय आया भाद्र पक्ष कृष्ण, भाद्र मास कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि, और उसमें भी हर्ष योग रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय हो, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की जय हो। तो जब जन्म हुआ है श्री कृष्ण का वसुदेव ग्रह में, वहां पर भगवान ने वसुदेव जी को इस प्रकार का आदेश दिया कि भैया हम यहाँ रहना नहीं चाहते, आप कृपा करके हमको नंद ब्रज में छोड़ाइए। तो नंद ब्रज में जब छोड़ने चले वसुदेव जी, तो सारी जो है सारी बाधाएं जो हैं वो योग माया के द्वारा सब उसका निरूपण कर दिया गया। सब द्वारपाल सब सो गए, सारे जो ताले हैं वो खुल गए, यमुना जी ने रास्ता दे दिया, सब कुछ। जब नंद ब्रज में पहुंचे तो वहां पर वसुदेव जी ने क्या देखा कि नंद पत्नी जो यशोदा है उनके अंक में एक बालिका स्थापित है। बालिका उन्होंने ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को वहां नहीं देखा, क्योंकि कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वहां अलक्षित रूप से स्थापित हैं, वसुदेव जी देख नहीं पाए। अब उन्होंने क्या किया वसुदेव जी ने कि उस बालिका को तो उठा लिया और अपने जो वसुदेव कृष्ण जो हैं उनको जैसे ही उन्होंने पर्यंक पे रखा तो वसुदेव कृष्ण ही नंद नंदन कृष्ण के अंदर समाहित हो गए। अलक्षित रूप से वहां पर नंद नंदन कृष्ण विराजमान है, सामने वसुदेव जी को दिख नहीं रहे हैं। अब यहां पर विशेष बात यह है कि प्रश्न एक उठाया आचार्यों ने कि वसुदेव जी के ऊपर कोई ये आरोप लगा सकता है कि आप इतना जो है ये घृणित कार्य कैसे कर सकते हो, आप अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए आप दूसरे की कन्या का वध करवा रहे हो। क्यों नंद ब्रज की यशोदा की पुत्री जो वहां पर विराजमान है, क्योंकि दो बालक जो है एक साथ उत्पन्न हुए थे, एक नंदनंदन श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और साथ में ही योग माया उत्पन्न हुई, दो एक साथ उत्पन्न हुए हैं। इसका प्रमाण जो है वो हरिवंश पुराण में दिया हुआ है कि नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समुपद्यता, मिथुनम दो उत्पन्न हुए हैं, गोविंदाख्यो पुमांस चैव और कन्या चापी दिवंगता। एक तो पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ गोविंद और एक कन्या चापी दिवंगता, वो कन्या जो है वो कंस के द्वारा जो है वो उसको मारने का प्रयास किया गया परंतु वो दिवंगता वो जो है आकाश में चली गई। और दूसरी बात जो कि नंद नंदन श्री कृष्ण में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण समाहित हो गए, इसका वैष्णव तोषणी में सनातन गोस्वामी पाद ने इसका निरूपण किया है कि वसुदेव समानी तो वासुदेव अखिलात्मनी और लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा, कि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण नंद नंदन श्री कृष्ण में ऐसे समा गए जैसे मेघ के अंदर बिजली समा जाती है, सनातन गोस्वामी पाद का उदाहरण है। तो कहीं पर भी कोई इसमें प्रमाण जो है वो गलत नहीं है, पूर्ण रूपेण स्पष्टीकरण जीव गोस्वामी पाद ने इसका दिया हुआ है कि नंद नंदन श्री कृष्ण में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में नंद नंदन वसुदेव नंदन जो है वो समा गए। अब यहां प्रश्न ये उठा कि वसुदेव जी इस प्रकार का जो घृणित कार्य जैसा दिखता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए इन्होंने नंद बाबा की जो पुत्री है जो योग माया जो है उसको कंस के हाथ में दे दिया, तो इसका समाधान इस प्रकार से किया गया कि जो योग माया उत्पन्न हुई थी नंद यशोदा रानी के यहां पर, वो योग माया तो अंतर्ध्यान हो गई और योग माया की जगह पर त्रिगुणात्मिका माया उसने स्थान ले लिया, और वो त्रिगुणात्मिका माया को वसुदेव जी उठाकर लेकर गए जिसको कंस ने मारने का प्रयास किया था। तो साधक जन भी यही करते हैं। देखो इसमें साधकों के लिए जो निरूपण है वो ये है कि वसुदेव जी जो है वो है शुद्ध सत्व और जो देवकी है वो है साधन भक्ति। तो साधन भक्ति देवकी जी है और शुद्ध सत्व वसुदेव जी है। तो जो साधक है कृष्ण प्राप्ति के लिए अगर उनको त्रिगुणात्मिका माया का नाश भी करना पड़े तो वो ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। त्रिगुणात्मिका माया का जब तक नाश नहीं होगा तब तक आप कृष्ण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये त्रिगुणात्मिका माया जिसको कि वसुदेव जी ने उठाया और उठा के जब कंस कारागार में फिर लेकर आए और जिसको कि कंस ने उठाकर एक पैर से पकड़कर शिला पर मारने का प्रयास किया, तो वसुदेव जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो साधक अपने जीवन में सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना चाहता है उसको चाहिए कि जब तक त्रिगुणात्मिका माया का नाश नहीं करेगा उसके जीवन में कृष्ण प्रेम जो है वो उदय नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांत जीव गोस्वामी पाद ने स्थापित किया है। तो इसीलिए वसुदेव जी वहां से लेकर आए और कंस कारागार में जिस प्रकार से पहली पूरी स्थितियां थी वो पूरी वैसी की वैसी हो गई। और जब कंस को पता लगा वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने उस कन्या को पैर से पकड़ा और पकड़ के शिला पर दे मारने का प्रयास किया। वो तो आकाश में त्रिभुज अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई। और आपको एक बहुत आश्चर्यचकित बात बताऊं, अगर आप हरिद्वार में जाएंगे तो हरिद्वार से ही सामने मनसा देवी हैं। सबने दर्शन किए होंगे जाके, अगर बहुतों ने किए होंगे तो ये जो मनसा देवी है ये वही त्रिगुणात्मिका माया है जिसका पूजन वहां हो रहा है। और एक और आश्चर्यचकित बात है कि रक्षाबंधन वाले दिन श्री कृष्ण हर रक्षाबंधन पर वहां पर जाके वो जो देवी जो है उनसे राखी बंधवाते हैं। यहां पर मेला होता है, वहां पर बहुत बड़ा मेला होता है वहां पर, इसीलिए मेला होता है। और गुरुजनों से जैसा सुना कि वो ही देवी त्रिगुणात्मिका माया है, ये पता कैसे चलता है? वहां के पुजारीगण जो है उन्होंने ये बात बताई है। कभी एक संत बता रहे थे इस बात को कि बोले हम वहां गए तो पुजारियों ने बड़ी एक बहुत गोपनीय बात बताई कि ये वही त्रिगुणात्मिका माया अष्टभुजी देवी है जिसको कंस ने मारने का प्रयास किया था। तो उन्होंने पूछा प्रमाण क्या है इसका, तो उन्होंने बहुत गोपनीय तरीके से श्रृंगार को थोड़ा सा हटा के, साड़ी को थोड़ा हटा के उन्होंने दिखाया तो देवी जी के चरण के ऊपर अभी भी कंस के पूरे हाथ का निशान है वहां पर। तो आप ऐसा ना समझें कि ये जितनी भी 14 देवियां जो स्थापित है पूरे वर्ष भारतवर्ष के अंदर, इन सबको कृष्ण का ही वरदान प्राप्त है, इसलिए सब पूजी जा रही है वहां पर। ये जो योग माया का जो कार्य किया है स्थानांतरण करने का संकर्षण भगवान का, देवकी के गर्भ से यशोदा के गर्भ में, रोहिणी जी के गर्भ में, इस कारण से पुरस्कृत करने के लिए 14 स्वरूपों में जो योग माया जो है उनको अलग अलग स्थानों पर पूरे भारतवर्ष में स्थापित किया है। और उनको भगवान ने वरदान दिया है कि तुम जो हो अलग अलग नामों के साथ पूजी जाओगी और जो तुम्हारी पूजा करेगा वो उनका तुम पूरी तरीके से जो वर मांगेंगे तुम्हें वो देना पड़ेगा। तो वैष्णो देवी इत्यादि जितनी भी हैं ये सब 14 स्वरूपों में विराजमान है पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां जहां पर भी देवी की पूजा हो रही है। तो कृष्ण जन्म का जो यह है ये रहस्य है कि दो बालक एक साथ एक समय में एक ही जगह अलग अलग जगह पर प्रकट हुए हैं। एक वसुदेव ग्रह में प्रकट हुए हैं और एक नंद ग्रह में प्रकट हुए हैं। तो जब नंद ग्रह में प्रकट हुए उसके बाद में जैसे योग माया प्रकट हुई है, योग माया के प्रकट होते ही सारे के सारे मथुरावासी सब सो गए और नंद ब्रज में भी सारे के सारे सो गए। तब वसुदेव जी वहां से चले और यहां पर आके उन्होंने जो है ये अदला बदली की है। अब बाद में जब वसुदेव जी लेकर वापस पहुंच गए और उसके बाद में जाकर जब कंस को ये पता लग गया कि देवकी के 8वें गर्भ के रूप में कोई बालिका जन्म ली है, तब जाके यहां पर नंद ग्रह के अंदर सबकी नींद खुली है। योग माया ने तब सबकी नींद खोली और सुबह के समय जो है फिर जो नंद बाबा की जो बहन है सबसे पहले सुनंदा जी, उन्होंने सबसे पहले दर्शन किया है कि अर्धरात्रि के मध्य में एक नीलमणि के समान चमक तो भयो बालक जो है वो यशोदा जी ने उसको जन्म दिया है। नंद बाबा बधाई है बधाई है। और उसके बाद हम जो है जन्माष्टमी, वास्तविकता में हमारी जन्माष्टमी वो दिन की नहीं है जिस दिन कृष्ण जन्म लिया है, हमारा उत्सव तो अगले दिन शुरू होता है, ठीक है ना। नंदोत्सव हमारा वास्तविकता में उत्सव है, जन्माष्टमी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नंदोत्सव है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात लादव महामना, आप देखो सुखदेव गोस्वामी का क्या संबोधन है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। सबसे पहली बात तो नंद बाबा के यहां पर उनका अपना आत्मज उत्पन्न हुआ है, कोई दूसरे का नहीं है किसी का। सुखदेव गोस्वामी ने प्रयोग किया है शब्द आत्मज, और आत्मज भी कैसा है बोले जात लाद आहलाद, साक्षात आनंद प्रकट हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये ऐसे नहीं बोला जाता, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है इसका, जातः लादव महामना, आह्लाद ही प्रकट हुआ है इसीलिए नंद के आनंद भयो है। तो नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने से लेकर रमा क्रीडम भुन पर तक ये 18 श्लोकों के अंदर नंदोत्सव का वर्णन किया गया है, जिसमें पूरे 18,000 श्लोकों का जो सार सर्वस्व है वो सुखदेव गोस्वामी ने इन 18 श्लोकों के अंदर वर्णित कर दिया। तो इसकी फलश्रुति बताई गई है कि व्यक्ति अगर 18 श्लोक नित्य पाठ करे तो उसको संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है रोज के रोज। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने से लेकर रमा क्रीडम भूमि पर तक, और इसी में ही अंतिम श्लोक जो है रमा क्रीडम भूमि पर, इसी में ही श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य का भी वर्णन कर दिया गया। ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक ऐसे हैं जैसे सीपी के अंदर मोती होता है, सीपी के अंदर मोती है ना, समुद्र है ये, रसार्णव है, रसमालयम है, जो जितना गहरा गोता लगाएगा उतना ही अच्छा मोती पाएगा। तो जब तक सीपी को नहीं खोलोगे तो मोती प्राप्त होने वाला नहीं है, केवल ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे तो शब्द का जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ तो पता लग जाएगा, परंतु भावार्थ क्या है और उसमें भी विशेषार्थ क्या है वो पता नहीं लगेगा। अब ये बहुत बार पढ़ा है नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने और फिर रमा क्रीडम भुन, रमा शब्द का अर्थ जैसी यहां पर आएगा तो रमा से आपको ये निश्चित रूप से ये प्रबोध हो जाना चाहिए कि यहां पर रमा का अर्थ राधा रानी है। क्यों? संस्कृत के अंदर वर्णन इस प्रकार से किया जाता है, किसी शब्द का जो अर्थ है वो प्रसंगानुसार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी गुरुजी ने अपने एक शिष्य से कहा कि वत्स सैंधव आनयम, सैंधव आनयम। अब सैंधव का अर्थ जो है वो प्रकरण के अनुसार होगा। मान लीजिए गुरुजी भोजन करने बैठे हैं और उस समय पर वत्स सैंधव आनय कहा गुरुजी ने, और गुरुजी के सामने सैंधव के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है नमक और दूसरा अर्थ होता है घोड़ा। अब शिष्य हो बड़ा चतुर चालाक है, ज्यादा ही बुद्धि लगा दे, उस समय पर सैंधव आनय गुरुजी भोजन करने बैठे हैं, वो घोड़ा ला के खड़ा कर दे, रसाभास हो जाएगा पूरा। तो वहां पर सैंधव आनय का अर्थ है कि नमक लेकर आओ। अब गुरुजी अब किसी यात्रा पे जाने लगे, वहां पर गुरुजी ने कहा सैंधव आने, अब वहां पर नमक लाके खड़ा कर दे, तो नमक जो है यात्रा में वो अशुभ माना जाता है, तो वहां पर उसका अर्थ घोड़ा होगा। तो संस्कृत का ये वैशिष्ट्य है कि शब्द का अर्थ जो है वो प्रकरण के अनुसार होता है। तो वैकुंठस्थे तु रमा प्रोक्ता और जानकी दंडका बने, रुक्मण्याम द्वारवत्याम और राधिकाम तु वने वने। जैसे रामचंद्रेण साकम रमा स सीता कहा जाएगा, रामचंद्र जी के साथ में जब रमा शब्द का प्रयोग होगा तो उस रमा का अर्थ होगा सीता, और रामचंद्रेण कृष्णचंद्रेण साकम रमा स राधा, वहां पर राधा अर्थ होगा, और जहां पर विष्णु के साथ में रमा का जहां प्रयोग होगा वहां पर अर्थ होगा लक्ष्मी, जहां पर शिवजी के साथ रमा का प्रयुक्त होगा तो वहां पर अर्थ होगा पार्वती। तो इसी प्रकार से शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार होता है। तो जैसे यहां पर रमा क्रीडम भूनि पर कहा गया तो इसका अर्थ है कि वहां पर राधा रानी का प्राकट्य हो रहा है। शुरुआत करते हैं ना गोपी गीत की, कैसे करते हैं, जय तितेदिकम जन्मनाव्रजन, और लास्ट में बीच में रमा शब्द प्रयोग हो रहा है ना, तो वहां पर रमा का अर्थ राधा रानी है, वहां पर रमा का अर्थ लक्ष्मी नहीं है, वहां रमा का अर्थ जो है और दूसरा कुछ नहीं है, केवल राधा रानी है। ब्रज के प्रकरण में कहीं पर भी रमा शब्द प्रयोग होगा उसका अर्थ राधा रानी हो जाएगा। तो ये कृष्ण जन्म और बलराम जी के जन्म का रहस्य है। आगे भगवान ने कुमार लीला संपन्न की 5 वर्ष तक की, जिसमें रिंगण लीला है और मृदभक्षण है और इत्यादि इत्यादि जितनी भी हैं। मैं सिर्फ इसका स्मरण दिलाता चल रहा हूं क्योंकि ये जो प्रसंग है इसको थोड़ा सा कवर करने की आवश्यकता है, साधक के लिए मुख्य है थोड़ा सा। और फिर पौगंड लीला का वर्णन आया है जिसमें अघासुर का वध है इत्यादि, ब्रह्म विमोहन लीला इत्यादि है। और जब पौगंड लीला पूरी हो गई है तो श्री कृष्ण जब कालिया वर्धन किया भगवान ने, उस समय पर भगवान की जो वय जो है, वे आयु जो है, वहां पर भगवान का आद्य किशोर शुरू हुआ है। आद्य किशोर पांच वर्ष कुछ मास की आयु है उस समय पर आद्य किशोर है। जब गोवर्धन लीला भगवान ने की है उस समय पर मध्य किशोर है, और जब रास लीला की है उस समय पर पूर्ण किशोर है भगवान नवम वर्ष के प्रारंभ में। तो आद्य किशोर, मध्य किशोर और पूर्ण किशोर के रूप में अलग अलग, यद्यपि नित्य किशोर है भगवान जब जन्म लिए हैं। और उसके बाद में जब राधा रानी का भी जन्म हो गया तो यशोदा मैया एक बार बहुत बुलाने पर कीर्ति मैया के बरसाने गई लाला को लेकर छोटे से। अब लेकर गई है तो बहुत दिनान के बाद तो मिली पहली बात, अब बहुत दिनान के बाद मिली है तो अब बातें करनी है बहुत बतरस, जानते हैं कहां कहां की गप्पा लड़ानी है पता ना, बैठेंगी आप आराम से। तो कीर्ति मैया ने कही कि लाला है तू मुझे दे दे, मैं लाली के साथ में पधरा दूं। तो एक ही पालने में ठाकुर जी है लाली के साथ पधरा दियो। अब बातन में लग गई दोनों, अब बात में जब तक तो दोनों का ध्यान है राधा कृष्ण के ऊपर तब तक तो ये बाल स्वरूप में ही है, और जैसे ही दोनों का ध्यान हटा अपनी बातों में ये अपने नित्य स्वरूप में आ गए। नित्य किशोर है, नित्य ब्रज में नित्य किशोर है हमेशा, परंतु ये प्रकरण जैसे ही होता है। मान लीजिए कि अब इस गर्ग संहिता में इतना वर्णन है इस चीज का, नंद बाबा ने स्वयं ठाकुर जी को राधा रानी के हाथ में दे दिया, जहां पर कि भांडीर वन में श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ विवाह हुआ है। तो जैसे अब वो ठाकुर जी राधा रानी के हाथ में आ गए, विचित्र बात है, राधा रानी बड़ी है कृष्ण छोटे हैं, गर्ग संहिता में वर्णन इस प्रकार से है। अब वही लाली जो है ठाकुर जी को लेकर हाथ में लेकर चली गई, इतना बवंडर आया और इतना आंधी तूफान आया, नंद बाबा तो एक जगह ठहर गए और राधा रानी जो है ठाकुर जी को लेकर चली गई है। और फिर उसी समय जैसी गई साथ में लेकर, और वो जो लाला जो है हाथ में वहीं से खड़े है कि नित्य किशोर हो गए, और साथ में ब्रह्मा जी ने आके विवाह करा दिया। तो हमेशा से नित्य किशोर है, परंतु केवल और केवल अन्य रसों के भक्तों को भी आनंद देने के लिए भगवान ये बाल स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। इतना विशेष, ये बड़ा, जो ऐसे नहीं कहा गया है कि दशम स्कंद जो है वो मुखारविंदम यस्य प्रफुल्लम, बहुत प्रफुल्ल मुख है भगवान का, स्मित है, यस्याननम मकर कुंडल चारुकर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम नत त्रिपु दृग्भि पिबंत्या नारियो नराश्च मुदिता मुदित कुपितानिमेश्च। ये ब्रज ऐसा है जहां पर नित्योत्सवम, किसी को सुबह विरह है, किसी को शाम को विरह है, हाँ किसी को मध्यान्ह में विरह है, किसी को अपराह्न में विरह है, परंतु श्री कृष्ण जब गिरिराज धारण कर रहे हैं तब किसी को विरह नहीं। 84 कोस ब्रजमंडल का आप देखो, 7 कोस के तो गिरिराज हैं और 84 कोस ब्रजमंडल 7 कोस के अंदर समाया हुआ है। विचार करने वाली, इसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रयता भगवान की। विरुद्ध धर्माश्रयता का अर्थ होता है जहां पर भगवत्ता का लोप बिल्कुल नहीं हो रहा है परंतु पूर्ण माधुर्य प्रकट हो रहा है, उसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रयता। 7 कोस के अंदर 84 कोस आ जाएगा, सामान्य रूप से देखा जाए तो नहीं आ सकता, परंतु 7 दिन के लिए भगवान ने 7 कोस का गिरिराज उठाया है और उस 7 कोस के गिरिराज के नीचे 84 कोस का पूरा जो है ब्रजमंडल जो है स्थापित हुआ पड़ा। यह है अचिंत शक्ति भगवान की। तो अलग अलग तरीके से नित्योत्सवम नत त्रिपु दृग्भि पिबंत्या, ब्रज के लोग कृष्ण को देख देख के आघाते नहीं है। ठाकुर जी सुबह श्रृंगार करके पूरा जैसे निकले गोचारण के लिए, सारे के सारे ब्रजवासी जो है आसपास अपने घरों में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल नया श्रृंगार करके ठाकुर जी निकले हैं बाहर। तो जैसे ही बाहर निकले तो सबकी दृष्टि जो है वो श्री कृष्ण के ऊपर पड़ रही है, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि में और रस ग्रंथों में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। कृष्ण माधुरी का माधुर्य, माधुर्य उसको कहते हैं जो सर्व काल में जो है वो आकर्षण करने वाला, उसको माधुर्य कहते हैं। तो भगवान जब निकले हैं, कानों में कनेर का जो फूल लगा हुआ है और मोर मुकुट है और बांसुरी हाथ में, पीताम्बर इत्यादि जो भी श्रृंगार है पूरा, तो जितने भी ब्रजवासी खड़े हैं अपने 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 रस के अनुसार जो है वो श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। वात्सल्य रस वाले जो हैं वो कृष्ण को ऐसे देख रहे हैं कि ये छोटो सो लाला है, बिल्कुल 5 वर्ष को अब ये गैया चराए हुए निकल जाएगा, तो हमारे प्राण जो हैं इसके साथ साथ जा रहे हैं बिल्कुल। अब पूरे दिन भर हम कैसे निकालेंगे जब तक ये आएगा नहीं वापस 4 बजे तक, गोधूली के समय तक, तो हमारा प्राण धारण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। ये वात्सल्य रस वालों की दृष्टि है। जो सखा है वो इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण का संग प्राप्त है, साथ में खेलना, साथ में भोजन करना, साथ में कुश्ती करना। वल्लभ कुल वाले तो यहां तक कहते हैं, बोले कन्हैया जब सखाओं के साथ खेले अपने और वहां में हार जाए, और जब हार जाए तो फिर मधुमंगल बोले, अब देखिए मैं शब्द का अगर प्रयोग करूं तो कभी कभार किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, परंतु ब्रज भाषा है, देखो आनंद लेने की बात है, मुख्य बात यह है। मधुमंगल बोले कि कन्हैया देख तू हार गए हैं, और जैसी हमारी ठनी पहले थे कि जो हारे गो वो अपनी पीठ पे ला देगा दूसरे वाले को, और यहां से लेकर वहां तक जावे गो, और तू हार गए अब तो चल सारे घोड़ा बन बन रहा है बनो घोड़ा तू। अब ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसे, हे मधुमंगल तू इतना तो कट्टो से द्रोत तू इतना खावे तू है, और मैं लटो दू भरोसो बिल्कुल है, मेरी मुट्ठी मेरी मैया कहवे कि तेरी मेरी कमर तो मुट्ठी में आ जावे बिल्कुल है, इतना सो तुम है, मैं इतना लटो दू भरो तू मेरे ऊपर चढ़ तो अच्छो लगेगा तू है, वो गधा बना रहे तू ऐसा ठीक ना है बिल्कुल। बोले ना है सारे घोड़ा बन बनना पड़ेगा तू, तूने पहले कही कहते कैसे कही तेने अब बनी। तो ठाकुर जी बोले मैं राजकुमार को लड़का हूँ तो पता ना है नंद बाबा का, बोले नंद बाबा को छोड़ो है तो ठीक है अच्छी बात है, परंतु खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया है, तू होगो राजकुमार का लड़का परंतु यहां पर तू घोड़ा है तो बनना पड़े वो। और ठाकुर जी के ऊपर जबरदस्ती मधुमंगल सखा जो है लद जाते हैं, और बोले चल टिक टिक घोड़ा चल, टिक टिक घोड़ा चल। तो देखो कितना सद्बंधु लौकिक भाव जिसे कहते हैं उसका प्राकट्य ब्रजलीला में जितना जितना उन्मुक्त रूप से हुआ है वो और कहीं नहीं। अब नारायण के कंधा पे तुम चढ़ के दिखा दो, है काऊ में हिम्मत? पिछली बार भी जैसे बताया जब वैकुंठ दर्शन करवाए हुए गए सबरे ठाकुर जी, सबरे सखान को, सबरे ब्रजवासीन को, तो वहां पर तो जितने भी जो सेवक हैं छड़िया अड़ाए के खड़े गए सबरे, बोले ऐसो है जे नारायण है इनके दर्शन यहीं तक कर लो, आगे तुम्हें जाए की कोई अनुमति ना है, आगे जाओगे तो तुम्हारे ऊपर अनुशासन किए जाओगे। सारे ब्रजवासी सखा जितने भी थे बोले कन्हैया लग तो बड़ा अच्छा रहे, वह चमचमा तो मुकुट रख पहन रखो, वाने इतना बढ़िया है, पीताम्बर धारण कर रखो है, तो हमारे कन्हैया तो यहाँ आको है कहाँ गए हैं, हमें वो देख के ना पहचान लो बिल्कुल। जैसे ब्रज में तो ठाकुर जी जहां बैठे ब्रज में ठाकुर जी अकेले तो रहते नहीं बिल्कुल भी, कोई ना कोई सखा साथ में जरूर रहे हमेशा, को मधुमंगल रहे वो, श्रीराम रहे वो साथ में, या कोई ना कोई जरूर रहे वो। अब वहां नारायण बैठे अकेले सामने, तो सारे सखा देख रहे वहां पर, हाथों हिलाए तो ठाकुर जी वहां तो कोई रिस्पॉन्ड देना रहे वहां पे क्यों, वहां मर्यादा है, वैकुंठ मर्यादा है पूरी की पूरी। अब सेवक ने छड़ी लगा रखी आगे, तो सारे सखा बोले बोले यार वैकुंठ की बलि जाए, हमें तो कन्हैया तू हमारो ब्रजो ही अच्छो है, तू वहीं ले चल हमें जहां तेरे कंधा पे चढ़ सके, तो सारे गारी दे सके हमें। तो ये जो रस जो है ना वास्तव सद्बंधु लौकिक भाव इसे कहवे कि आपका कृष्ण के साथ संबंध है कुछ, नारायण के साथ का संबंध है तुम्हारो, कोई संबंध ना है। तो जो आनंद संबंध में है हा? वो और काऊ में ना मिले। वो निवृत्त तरशई उपगीय माना भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात उमान विरजित बिना वशुगनाथ। ये नवम स्कंद के अंत में इस बात को सुखदेव गोस्वामी ने कहा है निवृत्त तरशई उपगीय माना, जो निवृत्त होना चाहते हैं वास्तविकता में ज्ञानी जन, वो भी अगर चाहें कि हमें सायुज्य प्राप्त हो, उसके लिए भी उनको भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो वो भी प्राप्त नहीं कर सकते। निवृत्त तरशई उपगीय माना मनोभिरामात, और जो वास्तविकता में भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए तो कृष्ण लीला ऐसी है, बोले कैसी, अमृत के समान है। नित्योत्सवम नत त्रिपु दृग भी पिबंत्या, अरे कृष्ण लीला वो कानों से तो पीते ही पीते हैं, आंखों से और पीते हैं, जीवा से पीते हैं, नासिका से पीते हैं। कौन सी ऐसी घ्राणेन्द्रिया, कौन सी ऐसी इंद्रिय है जिससे कृष्ण लीला का रस नहीं लेते ब्रजवासी, बताइए। सभी इंद्रियों से रस ले रहे हैं, तो इनसे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये बात पता है किसने बोली, ये बात बोली ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी चाह रहे हैं कि मैं कहीं जाके ब्रज में कोई एक गुल्म लता औषधि बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने ये तक नहीं चाहा कि मैं कोई गोपी बन जाऊं, क्यों, क्योंकि उनकी ये जो एप्लीकेशन भगवान के सामने डाली गई ना, भगवान ने रिजेक्ट कर दी। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म विमोहन लीला पूरी देखी कि ये हुआ क्या मेरे सामने, इतना बड़ा रहस्य है ब्रह्म विमोहन लीला का। पूरे एक साल ठाकुर जी खुद बछड़ा और गाय बने हुए हैं, बूढ़े सखा बने हुए हैं, तीन जगहों पर वर्णन इसका जीव गोस्वामी पाद ने इतना सुंदर निरूपण किया है कि तीन सेट हैं बछड़ों के और ग्वाल बालों के। एक वो बछड़े और ग्वाल बाल हैं जिनको ओरिजिनल, जिनको कि योग माया ने ब्रज की रज में कहीं पर छुपा दिया है। दूसरे वो बछड़े और ग्वाल बाल हैं जो योग माया ने प्रकट किए हैं सामने छाया रूपी, और तीसरे वो बछड़े और ग्वाल बाल हैं जो स्वयं श्री कृष्ण बने हुए। तीन सेट हैं एक साथ। अब ब्रह्मा जी जिनको लेकर गए वो तो अपने ब्रह्मलोक में सो रहे हैं, जब वापस आए तो देखा कि भैया यहां पर तो ये सारे के सारे लीला कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए पूरे। जब विमोहित होने के बाद जब उन्होंने प्रणति की सामने नौमिद्यते अप्रवप से तड़िदम वराय, 40 श्लोकों में वर्णन है, तो वहां पर इस बात को कह रहे हैं कि मैं वास्तविकता में समझ गया कि आपकी पूरी लीला है और मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो वहां उन्होंने कहा अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम, जो परमानंद श्री कृष्ण है वो ब्रजवासियों के क्या बने हुए हैं, मित्र बने हुए हैं। पूर्णम ब्रह्म सनातन, जो सनातन पर ब्रह्म अखिल है, ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म है, वो ब्रजवासियों का सखा बना हुआ है। तो ये जो सद्बंधु लौकिक भाव है, इसी कारण से ब्रह्मा जी जो है वो आकर्षित हुए और उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी एक अर्जी डाली कि मेरी भी एक अर्जी आप सुन लीजिए कृपा करके, कि मैं भी कहीं ब्रज में एक गुल्म लता औषधि कुछ बन जाऊं। भगवान ने कहा कि ऐसा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब इन सबको चुराया था, वास्तविकता में ब्रह्मा जी की सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण के सखा बालकों को चुरा लें, ब्रह्मा जी में कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे रावण की सामर्थ्य नहीं है कि वो सीता जी को चुरा लें, केवल छाया सीता को लेकर गया रावण, अगर टच भी कर देता सीता जी को तो वहीं भस्म हो जाता। इसी तरीके से ब्रह्मा जी के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि वो कृष्ण के सखा ग्वाल वालों को चुरा सके, तो छाया को केवल लेकर गए हैं। तो ये जितना ऐश्वर्य जब भगवान ने देखा है ब्रह्मा जी ने, तब जाके उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि कृपा करके मैं भी एक गुल्मलता औषधि बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि ऐसा है भैया, तुम्हारी जो ये एप्लीकेशन है ये रिजेक्टेड है, नहीं अभी तुम जिस पद पर बैठे हो उसी पर बैठे रहो। तो वहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप कृपया करके, भले ही ठीक है आप मुझे ना दें ऐसा पद, परंतु ये एप्लीकेशन आप लगाए रखिएगा, कभी कभी तो मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं जो है यहां पर आपकी कुछ सेवा कर पाऊंगा। तो आप जानते हैं फिर भगवान ने कृपा की उनके ऊपर और ब्रह्मा जी किस स्वरूप में यहां पर सेवा कर रहे हैं, किस स्वरूप में कर रहे हैं, हाँ, जिस पर श्रीमती राधा रानी विराजमान है ना, वो ब्रह्म पर्वत, वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो भगवान कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब पे कृपा करते हैं। तो ब्रजलीला का तो देखो अंत नहीं है, कितना भी कहते चलो इसको, इसमें माखन चोरी लीला आ जाएगी, फिर उसके बाद अनंत अनंत लीलाएं हैं जिसका रस जो है वो खूब विस्तार से वर्णन किया है। अब भगवान ये लीलाएं पूरी करके 11 वर्ष की फिर मथुरा में जब आए वापस, मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि समय हो चुका है और हर बार ऐसा हो जाता है कि समय अगर अतिक्रमण हो जाए तो आगे जो है वो थोड़ी समस्या होती है, संकेत में समझ लीजिए बात। तो अब भगवान जो है वो ब्रज लीला पूरी करके जब यहाँ पर आए तो फिर उनका उपनयन संस्कार हुआ और फिर सांदीपनी मुनि के यहाँ पर भगवान पहुंचे। देखो अब सिद्धांत की बात, यद्यपि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी और सो प्रभु पढ़ ही, ये कौतुक भारी गोस्वामी जी का वाक्य है कि जिनकी श्वास यस्य निश्वसितम वेदा ब्रह्मांडंच कलेवरम, जिनकी श्वास से वेद प्रकट होते हैं वो व्यक्ति पढ़ने के लिए जा रहा है, है? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। हा? एक वर्ष के अंदर 64 कलाओं का वर्णन है, एक दिन में एक कला सीख लेते हैं। सीखना क्या है, सीख ही सिखाई है, अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि लोकवत लीला है ना, लोकवत लीला में केवल अभिनय करके दिखा रहे हैं कि यदि आप विद्यार्थी स्वरूप में हैं तो आप कृपा करके घर में मत रहिए, आप गुरु के गृह में जाके पढ़िए। कोई किसी का पिता अगर बहुत विद्वान हो, षडंग वेद का पारंगत हो और वो चाहे कि मैं अपने पुत्र को घर में ही बैठ के पढ़ाऊं, तो जिस प्रकार का अनुशासन और जिस प्रकार के संस्कार उसको गुरु ग्रह में प्राप्त हो सकते हैं वो उसको अपने घर में प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसे ही पढ़ाने बैठेंगे और थोड़ा सा अनुशासन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षक का ये कार्य है कि अगर छात्र जो है अगर चंचलता करे थोड़ी तो उसको उपाध्यायाम चपेटिकाम ददाती, ये एक सूत्र है, उपाध्यायाम चपेटिकाम, चपेटिका मतलब थप्पड़ मार देना। तो अब अगर पिताजी जो है वो अपने पुत्र को कहीं अनुशासन करने के लिए एक थप्पड़ मारने का प्रयास करो, तुरंत उठ के जाएगा, मैया की धोती में घुस जाएगा, ठीक। आप पिताजी कुछ कर नहीं सकते और मैया भी बोलेगी इतने दिनांक में तो ये एक भयो है, एक आध दो तो मोड़ा है हमारे, वन पे भी तुम इतना अनुशासन कर रहे हो, है? और वो वहां धोती में तो निकलो या अंगूठा और दिखा रहा हूं, बड़े कल्लो का करोगे तुम, मैया के पास है हम अपनी। तो जिस प्रकार का अनुशासन गुरु ग्रह में हो सकता है वो घर में नहीं हो सकता। विद्यार्थी का देखो लक्षण क्या बताया गया है, विद्यार्थी का लक्षण बताया गया है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी और गृह त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के पांच लक्षण है, तो उसमें से पांचवा बताया गया गृह त्यागी, उसको गृह त्याग करके फिर विद्या अर्जन करनी चाहिए। इस प्रकार से जब करेगा अनुशासित होकर गुरुजी के अनुगत्य में रहकर तब वास्तविकता में कुछ सीखेगा, नहीं तो घर में रहकर प्रयास नहीं कर पाएगा इतना। और कई तो ऐसे चेला हुए हैं जो गुरुजी को ही बस पूछो मत, वो गुरुजी कितनों प्रयास कर ले ये समझ पूरा हाथ में ना आवे, बिल्कुल ऐसे चेला कई होते हैं। एक बार क्या हुआ, विनोद की बात कह रहा हूं बिल्कुल, एक गुरुजी थे उनके दो चेला, तो सुबह सुबह के समय गुरुजी एक तख्त पे बैठे अपनी पूजा इत्यादि करने के लिए, और दोनों चेला को बुलाया, बोले कि ऐसा है हम बैठ गए हैं शालिग्राम पूजा करने के लिए, तुलसी ले आओ जरा, बाकी सब सामग्री तो है हमारे पास, तुलसी हम भूल गए हैं। तो पहला वाला जो है वो बोला कि गुरुजी तुलसी ये क्या होती है, तुलसी तो हम जानते नहीं, तुलसी क्या होती है, आपने कभी बताया नहीं हमें तुलसी क्या होती है। चेला ऐसे कई होते हैं, अब पहले वाला तो बच गया, कई होते हैं ऐसे जो कामचोर टाइप के, अब दूसरे वाला विचार करने लगा ये तो बच गया, अब गुरुजी मेरे को कहेंगे, अब मेरे को जाना पड़ेगा, वो उससे ज्यादा चतुर, बोले गुरुजी तुलसी वो वही होती है ना जितने बड़े बड़े पत्ता होते हैं जाके, वो उससे ज्यादा चतुर। तो गुरु जी समझ गए कि भैया ये जो है कम नहीं है दोनों। तो वो गुरु ही क्या जो चेलों पे अनुशासन न कर सके, गुरु जी भी कम नहीं थे, शेर पे सवा शेर। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुलसी ला तो नहीं सकते हो कोई बात नहीं, परंतु तुलसी के बगीचा तक तो ले जा सकते हो हमें। अब दोनों सोचने लगे, फिर फंस गए, बोले उठाओ तखत ले चलो तुलसी के बगीचा तक। अब दोनों बेचारे तुलसी के तखत को उठा के बगीचा तक लेके गए, वहां पर तुलसी जी उतारी गुरु जी ने, फिर बोले ले चलो उठा के वहां पर वहीं तक। फिर दोनों उठा के लेके गए, गुरु जी अंत में बोले तुलसी भूलोगे तो नहीं है दोबारा। कई चेला ऐसे हो जो काम ना करवा चाहे, गुरु जी ऐसे होते हैं कई बार। तो विद्यार्थी का अर्थ जो ग्रह त्याग करके गुरु जी के यहां पर जाके अनुसार, भगवान लोकवत लीला में ये दिखा रहे हैं स्पष्ट कि मैं यद्यपि सब कुछ जानता हूं, मेरे लिए कुछ करने योग्य नहीं है, परंतु मर्त्यावतारम यह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्यावतार यह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बदायव केवलम न विभु, कि मर्त्य लोक में मर्त्य जनों को शिक्षा देने के लिए मैं उस प्रकार का आचरण करके दिखाता हूं कि मेरा आचरण मेरे को देखकर अगर आप इसका अनुशासन करेंगे, इसका पालन करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। राम जी ने ऐसा करके दिखाया, देखो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र पूरा सुखदेव गोस्वामी ने 2 अध्यायों में कहा है, इतना सुंदर चरित्र कहा है कि भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ में है तो पूरा कैसे विद्यार्थी का कैसे जीवन होना चाहिए भगवान ने करके दिखा दिया। ऐसा 12 बजे तक तो रात को, 2 याम तक तो रात को विश्वामित्र मुनि कथा सुनाते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी सुनते हैं बैठकर। और जब उसके बाद विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि ठीक है अब जाओ शयन करो, पुनि पुनि तात करो शयन, बार बार जाके कहते हैं विश्वामित्र की शयन करो जाके, तो भगवान जो है पहले तो विश्वामित्र मुनि पौड़ जाते हैं तो राम जी जो है चरण दबाने लग जाते हैं। तो जब विश्वामित्र मुनि थोड़े अलसा जाते हैं तो कहते हैं कि जाइए शयन करिए, तो बहुत मन्नतें करने के बाद राम जी शयन करते हैं, तो राम जी शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी चरण दबाने लग जाते हैं। तो इतने में तो तीसरा याम निकल गया और पुनः जो है प्रातः होने वाली है। और उसके बाद वहां शब्द आया है जगे लखन, उठे लखन, हाँ उठे लखन शब्द प्रयोग हुआ है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, बोले लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं केवल बस लेटे और उठ गए। जैसे ही जो मुर्गे की आवाज है वो कान में पड़ी तो लक्ष्मण जी उठ गए। और उसके बाद में गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, जो इतना लेट सोए हैं फिर भी विश्वामित्र मुनि गुरु जी से पहले जगे हैं। भगवान दिखा रहे हैं देखो लोकवत लीला में भी कैसे करना चाहिए। और यहां पर विचार करने वाली बात है, अब गुरु जी अब 12 तो बज जाए सेवा में, गुरु जी बोले 4 बजे, अब आप 12 तो बजा देते हो, सुबह उठे कैसे हो। और फिर उसके बाद सुबह उठते ही प्रातः स्नान संध्या इत्यादि सब कुछ करना। और वहां पर लिखा है गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि प्रातः नहाए चले रघुराई, भगवान स्नान करके फिर उसके बाद विश्वामित्र मुनि के साथ चले, ये नहीं लिखा प्रातः खाए चले रघुराई, यहां तो उठते ही खाना शुरू। तो विचारणीय बात यह है कि कैसे अनुशासन में रहकर गुरु ग्रह में शिक्षा जब प्राप्त की जाती है तो उसका इतना फल होता है, गुरु जी प्रसन्न होते हैं उससे, शिष्य जो है जब शिष्य जब गुरु को प्रसन्न कर लेगा तो सब कुछ